الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعًا وخفيةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی پہلے کارگزاری بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اگر وہ چھوٹی سی کارگزاری بڑی نہ ہوئی اور وہ کھینچ کے لمبی نہ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. مسجد نبوی میں تیسری بار اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ بار بار حاضری کا موقع دے وہاں پر. تینوں مرتبہ ایک چیز دیکھنے میں آئی سامنے، وہاں جو اردو میں بیان ہوتا ہے، اردو میں، اس سے لوگوں میں بہت زیادہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور بہت ہی کسی فتنہ پرست قسم کے جاہل آدمی کو وہاں لے جا کے بٹھایا ہوا ہے جو اردو میں بیان کرتا ہے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو باقاعدہ سعودی حکومت کو ان کے خلاف کوئی کمپلین کرے، کوئی لیٹر لکھے. اس کی کوشش اور ضرورت ہے اس کی کہ وہاں جو ایک کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اردو میں بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے پاکستانی یا انڈین ہی ہیں، وہ فرقواریت بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں اور کوئی پراپر طریقے سے ایسا شخص نہیں ہے جو باقاعدہ سعودی گورنمنٹ کو ان کی شکایت لگائے یا وہاں ائمہ حرمین کو شکایت لگائے کہ یہ آدمی کس طرح سے فتنہ پھیلا رہا ہے. جب بھی وہاں بیان میں بیٹھا ہوں تو اس شخص نے ہمیشہ امت کو توڑنے کی بات کی ہے اور فرقواریت پھیلانے کی بات کی ہے، لیکن وہ اتنا چالاک ہے. یہ بات ممبر پہ بیٹھ کے کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ بتا دوں آپ کو میں. وہ اتنا چالاک آدمی ہے کہ عرب علماء کے سامنے اس کا رخ کچھ اور ہے اور انڈین اور پاکستانیوں کے سامنے اس کا رخ کچھ اور ہے. حتیٰ کہ مسجد نبوی کے امام جب بیان کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی غلط کرتا ہے. میں جب بیٹھا، میں مسجد نبوی پہنچا عصر کی نماز میں، تو نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ مجھے نماز کی جگہ ملی تو وہیں وہ حلقہ لگ گیا، بیان شروع ہو گیا. تو ایک محترم بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے. بیان کا دورانیہ میرا خیال ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا، تو پورے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ والدین کے حقوق پر کوئی بات کی ہو، سود کے خلاف کوئی بات کی ہو، تکبیر اولیٰ کی اہمیت پہ کوئی بات کی ہو. ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ فروعی اور اختلافی مسائل کے علاوہ کچھ بھی بیان نہیں ہوا. اور چلو ایک مرتبہ ہوتا ہے، جب بھی جاؤ مسجد نبوی، جب بھی جاؤ تو یہی سننے کو ملتا ہے. بہت سے لوگ پھر ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، حضرت یہ کہہ رہا ہے، ہم تو آج تک یہ سنتے آئے تھے. تو میں کہتا ہوں بھائی غلط کہہ رہا ہے. اور یہ تو بات، یہاں مسائل تو کرنے کے ہیں ہی نہیں. تو میں دو دفعہ تو صبر کیا کہ اس موضوع پر میں نے بیان نہیں کیا. اب تیسری دفعہ گیا تو میں نے کہا وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو کم از کم یہاں سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ان فتنہ پرست لوگوں کے بارے میں ضرور بتائیں کہ ان لوگوں سے ذرہ برابر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں چونکہ بیٹھا ہے تو دودھ سے دھلا ہوا ہوگا, زمزم سے دھلا ہوا ہوگا, اور افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, یا تو انڈین ہیں یا پاکستانی. تو انڈین پاکستانی ماشاءاللہ وہاں جا کے بھی کیا کر رہے ہیں, خیر کی باتیں بھی بہت ہو رہی ہیں لیکن شر پھیلا رہے ہیں. صرف مسلک کو اپنے وہ ہائی لائٹ کرنا, اپنے مسلک کو پھیلانا, وہ تو مسلمانوں کا مرکز ہے وہ جگہ, وہاں کسی خاص مسلک پہ بات کرنا یا کسی خاص مسلک کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنا, اس سے تو سوائے فرقہ پرستی اور مسلک پرستی پھیلنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اب میں آپ کو دو تین چھوٹی سی باتیں بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. میں جب بیان کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا بھی حج کے فضائل بیان ہوں گے, عمرے کے فضائل بیان ہوں گے, مسجد نبی کی حاضری کی فضیلت بیان ہوگی, تو ہمارا اور ایمان تازہ ہوگا, خوشی ہوگی. محترم کے پاس ایک پرچی آئی, پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ وہاں بہت سارے مسلک ہیں, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پرچیاں دینے کے لیے بھی اسی نے اپنے بندوں کو بٹھائے, ورنہ عوام کو ان چیزوں میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. کوئی مسجد نبی یہ پوچھنے کے لیے تھوڑی جائے گا حج اتنا لمبا سفر کر کے. پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا. دوسرا مسئلہ پوچھا رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تیسرا مسئلہ پوچھا کہ سفر کے دوران ہم جب میقات سے گزرتے ہیں اگر عمرے کی نیت نہ ہو تو احرام باندھنا چاہیے, یعنی احرام باندھنا لازم ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ آپ جب بھی مکہ جائیں گے چاہے عمرے کی نیت نہ بھی ہو تو میقات سے احرام باندھے بغیر آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی ایک نوعیت کی بے ادبی ہے. مکہ عام شہروں کی طرح کا ایک شہر نہیں ہے, وہ حرم ہے, وہ بلد اللہ ہے, اللہ کا شہر ہے, وہاں آپ ایسا ہی نہیں داخل ہو جاؤ. جب بھی آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو اللہ کے گھر کی حاضری دینی پڑے گی, اور اللہ کے گھر کی حاضری عمرے کے ساتھ ہوگی, اور عمرہ بغیر احرام کے نہیں ہوتا. تو یہ تیسرا مسئلہ ان سے پوچھا گیا اختلافی. چوتھا مسئلہ پوچھا گیا کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے. امام مالک کا جو مالکی لوگ وہاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے. تو چار تک تو میں برداشت کر سکا, پانچویں سے پہلے پہلے میں اٹھ گیا. سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے چار مسائل کے جو جواب دیے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا مسئلہ ان سے کیا پوچھا تھا, آپ لوگ کو بھی تو سبق یاد ہونا چاہیے, کیا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں یا ہاتھ باندھنے ہیں. تو محترم نے بتایا کہ ایک تو چیخ بہت رہے تھے, وہ چیخ بہت رہے تھے ہاں کر کے جو ہے نا,
اس کا پرانی عادت ہے.
تو اچھا آپ کو بھی بھگتے ہوئے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ یہ بھی گئے ہیں یہ بھی بھگتے ہوئے ہیں. دیکھو جتنے یہاں عمرہ کرنے والے یا حاجی بیٹھے ہوں گے جو اس کے بیان میں بیٹھے ہیں سب بھگتے ہوئے ہیں, سب بھگتے ہوئے ہوں گے. تو چیخ بہت رہا تھا, اسی سے پتا چلتا ہے کہ روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں. تو بھائی بات تمیز سے کر لو, ایک علماء کے ادب احترام کے ساتھ ایک مسئلے کو بیان کر لو, بولو یہ میری رائے ہے, لیکن علماء کا اس میں دوسرے علماء بھی ہیں, دوسروں کی رائے ہے, تو اگر آپ کو دوسروں کی رائے کو فالو کرنا ہے تو آپ ان کو فالو کر لیں. تمیز ہوتی ہے, کوئی شعور ہوتا ہے. تو وہ چیخ بہت رہا تھا, چیختے چیختے اس نے مسئلہ بیان کیا کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز جائز نہیں ہے. اور دلیل یہ دی, سوری یہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا. اچھا دیکھیں خیانت دیکھیں, جہاں مسئلہ ایسا آئے گا ان محترم کا عرب علماء سے اختلاف ہے, سعودی عرب کے علماء سے اختلاف آ رہا ہے, وہاں وہ بڑے اعتدال سے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. क्योंकि वो अरबों से फटेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से सऊदी निकाल देंगे उनको। जहां मसला आइम्मा के दरमियान आ रहा है, अबू हनीफा का या इमाम मालिक का या इमाम अहमद बिन हम्बल का या इमाम शाफी का इख्तलाफ आ रहा है, वहां धड़ल्ले से बयान कर रहे हैं कि वो गलत हैं और हम सही हैं, क्योंकि इमाम शाफी तो मौजूद नहीं है जो इसको मस्जिद नबी से कान से पकड़ के बाहर निकालेंगे। बहुत मुश्किल है आप लोगों को समझाना, उनको कैसे समझाऊंगा जब आपकी समझ में नहीं आ रहा। जहां मसला आ रहा है अरब में इख्तलाफ का, तो वहां बड़े एतदाल से बयान हो रहा है, बड़े एतदाल से कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। जहां मसला इमाम शाफी बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल से भी इख्तलाफ आ रहा है ना, उसको भी बड़े एतदाल से, क्योंकि सऊदी उलमा हम्बली फिका को फॉलो करते हैं। लेकिन जहां मसला आएगा इमाम शाफी का, इमाम मालिक का या इमाम अबू हनीफा का आ गया, तो फिर तो ऐसी की तैसी कर देनी है ना, इमाम हनीफा तो वो किसी खाते में ही नहीं डालते वो लोग। लेकिन इमाम मालिक का या इमाम शाफी का आ गया तो भी बड़े धड़ल्ले से उस पर रद्द करना। तो मैं ये चीज नोट कर रहा था। अब चार मसाइल मैंने आपको बयान किए, इन चारों का उनका जो मोहतरम का स्टाइल था वो आपको बताता हूं मैं। पहला मसला उन्होंने बयान किया कि रुकू में, ये मैं मकसद सिर्फ वहां का नहीं बयान करना, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी मौलाना आदमी, एक उसूल और जाब्ता बयान कर रहा हूं। देखो जैसे डॉक्टरों में अच्छे भी होते हैं और बहुत से डॉक्टर बीमारियां फैलाने का जरिया और सबब भी बनते हैं, क्या ख्याल है? तो अब ये नहीं कि जो भी डॉक्टर जिसके नाम के साथ भी लगा हुआ है आप अपनी नब्ज पकड़ा दें उसको और जो दवा लिख के दे दें आप खा लें उसको, पहले देखते हैं कि ये बंदा सही है भी या नहीं है। तो जैसे डॉक्टरों में अच्छे भी होते हैं और दो नंबर भी होते हैं, साइंसदानों में भी ऐसा होता है, अच्छे भी होते हैं और दो नंबर भी होते हैं। लोग समझते हैं साइंसदान एक नंबर ही होते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस की जो थ्योरीज हैं, नजरियात हैं, वो बाज दफा दयानतदारी पर मबनी होते हैं और बाज दफा वैसे ही। साइंसदानों ने भी माजी में बड़ी बड़ी छोड़ी हैं, लोगों को गलत चीजों पे लगाया है, इसकी हकीकत है। बाज उसमें मजहबी अपने नजरियात को शामिल करने के लिए साइंस की थ्योरी ऐसी पेश की गई कि उनके मजहब के खिलाफ ना जा रही हो, हालांकि वो थ्योरी गलत थी। इसकी मिसालें हैं, अभी मैं नहीं दूंगा इसकी, वो वक्त बहुत हो जाएगा। तो सियासतदानों में भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, आमिलों में सारे बुरे होते हैं, ये बता दूं आपको, आमिलों में अच्छा कोई नहीं होता। ये कहीं आप समझे, मुझे लोग कहते हैं आमिलों में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, अच्छे बच्चे कोई नहीं होते इनमें, सब उल्लू बनाते हैं। सिर्फ एक दुनिया की वाहिद कौम है आमिल, कि जिसमें अच्छा कोई भी नहीं होता, समझ रहे हो बात को? सब उल्लू बनाने वाली बातें हैं। अभी किसी के खानदान में किसी पर जिन बिन भाग गया, तो उनके खानदान में कोई आमिल आए हुए थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो हमारे खानदान में किसी खातून पे जिन आए। मैंने कहा इस आमिल को जब तक नहीं निकालोगे जूते मार के, तुम्हारे खानदान से जिन नहीं भागेंगे। इसको जितना इसको टॉर्चर करोगे ना जहनी, जूते मार के भगाओ अपने खानदान से इसको, तो सारे जिन चुड़ैल भूत इसके साथ ही भाग जाएंगे। जहां तावीज गंडे वाला पहुंचेगा जिस महल्ले में, उस महल्ले में सबसे ज्यादा जिन चुड़ैल भूत के वाकयात होंगे, ये बता दूं आप। ये मौजू ऐसा है इसमें फिर मैं जरा ज्यादा जज्बाती हो जाता हूं, क्योंकि इसमें हमारे अपने मौलवी इन्वॉल्व हैं, अहले हक, जो कि गलत नहीं है लेकिन बेवकूफ बने हुए हैं। नेक आदमी बेवकूफ बन सकता है, समझ रहे हो? नेक होना अलग चीज है, जहीन और फतीन होना अलग चीज है। मैं ऐसे फासिक फाजिर लोगों को जानता हूं जिन्होंने आमिलों के फ्रॉड को पकड़ा, और ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं जो आमिलों के फ्रॉड को नहीं पकड़ सके। तो बुजुर्ग होना, नेक होना बिल्कुल अलग चीज है, और परले दर्जे का अहमक होना और जहीन होना अलग चीज है। ऐसे ऐसे नेक लोग हैं, बड़े बड़े बेवकूफ होते हैं, हकीकत बता रहा हूं, ऐसा होता है। दिमाग तो, दिमाग की तेजी जैसे जिस्मानी सेहत, जिस्म कमजोर आदमी भी नेक हो सकता है ना, जिस्मानी लिहाज से जो कमजोर हो तो नेक हो सकता है, तो ऐसे ही दिमागी लिहाज से भी कोई कमजोर हो मगर नेक हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि नेक होने के बाद उसकी अकल में कुछ इजाफा होता है बहरहाल, लेकिन वो अपनी सलाहियत के हिसाब से इजाफा होता है। खैर, तो जैसे सियासतदानों में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, डॉक्टरों में अच्छे भी होते हैं, तो इसी तरह याद रखो मौलवियों में, उलमा में, मुफ्तियों में अच्छे भी होते हैं और दो नंबर भी होते हैं। और जैसे आमिलों में मैंने एक बात आपको बताई थी कि बाज नेक होते हैं मगर बेवकूफ होते हैं, यानी वो समझते हैं कि जिन है हालांकि होता नहीं है। ये मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वो अमलियात कर करके उनका दिमाग अपना अपनी सेटिंग आउट हो जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई चुड़ैल बैठी हुई है सामने, हालांकि होती नहीं है। ना होना की दलील क्या है? इसलिए कि किसी को भी नजर नहीं आ रही। तो जो चीज किसी को नजर ना आए, सिर्फ एक आदमी को नजर आए, तो या तो वो सारे पागल है या ये एक आदमी पागल है। सारे पागल नहीं हो सकते, एक को पागल करार दे दो फिर ये बातें पेचीदा हो जाती हैं, बहुत मुश्किल से समझानी पड़ती है। लोग कहते हैं हो सकता है उसके बाद मावराई उलूम कुछ इस किस्म के हों जिसको उसको नजर आ रहे हो, हमको नहीं आ रहे हो। कोई ऐसे उलूम किसी के पास नहीं होते जिन चुड़ैल के मामले में। अल्लाह की तरफ से इल्हाम या कश किसी को हो सकता है, उसका मैं मुनकिर नहीं हूं, वो अहयानन कभी कभार हो जाता है। उसमें कोई बाकायदा ये नहीं होता कि इनको बाकायदा इल्हाम सेंटर खोल लिया हो इन्होंने और इल्हाम के डिप्लोमे करा रहे हो लोगों को, ऐसा नहीं होता कि पूरे पूरे रिसाले छप रहे हो। अभी मैं लाहौर सफर पे गया था तो एक बहुत बड़े आमिल जिनके खिलाफ नाम लेकर मैंने बयान किया है उसके बारे में सुना कि उसने मेरी दावत की है, तो मैंने कहा इनको पता नहीं है कि मैं इनके खिलाफ कितना बोलता हूं। तो उसने कहा कि दावत देने वाले ने कहा इनको पता है फिर भी इन्होंने आपकी दावत रखी है, शायद ये अखलाक और जर्फ का इजहार करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये जर्फ नहीं है, ये खाने के दस्तरखान पे तस्वीर ले लेंगे मेरी मोबाइल से और नेट पे डाल देंगे, हजरत जी भी मेरे साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं और इसको फिर कैश कराएगा ये आदमी। ये लोग उलमा के पास जाके अपनी तस्वीरें उनके साथ ले लेते हैं और नेट पे डाल देते हैं। लोग कहते हैं मौलाना तारी जमील साहब भी हजरत जी के साथ बैठे हुए थे, हजरत पीर जुल्फिकार साहब भी बैठे हुए थे, हजरत हकीम अख्तर साहब के फला खलीफा भी बैठे हुए थे। तो भाई बैठने पर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी बैठ सकता है। ये उस आदमी के सही होने की क्या दलील है? अगर मैं किसी पादरी के साथ बैठा हूं तो इसके क्या मतलब, मैं ईसाइयों से ईसाई मजहब को सही समझता हूं? अभी लाहौर में मेरा बयान हुआ तो मैंने थोड़ा सा पादरियों के बारे में भी कुछ बातें की। बयान के बाद एक सूट टाई में एक साहब आके मिले, गले पुरतपाक तरीके से, और कहने लगे वेल डन, बहुत अच्छा बयान हुआ आपका, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं शुक्रिया आपका। बाद में किसी ने बताया ये पादरी है, किसी ने क्या बताया कि ये क्या है, हमने कहा ले भाई। फिर मैंने उसको दोबारा बुलाया, पादरी साहब, मैंने कहा अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूं, मुझे थोड़ी पता था कि ये भी बैठा है। बंदा सामने बैठा हो तो थोड़ा सा फिर उसमें जरा एहतियात करनी पड़ती है कि कोई तंज ना हो, चुभती हुई बात ना हो। तो हम तो पादरियों पे चुभते हुए कलिमात कहना मुनासिब नहीं समझते, और लोग इमाम हनीफा और इमाम मालिक और इमाम शाफी को नहीं बख्श रहे हैं मस्जिद नबी में बैठ के, तो ये कैसी अजीब सी बात है। तो आमिल जो है ना, आमिल उसमें अच्छे अगर होता भी है कोई, तो वो इस हैसियत से अच्छा होता है कि अपनी जात की हद तक नेक है, और बेवकूफ बन गया बेचारा अमलियात कर करके उसको चीजें नजर आना शुरू हो गई, नजर होती वोती कुछ नहीं है। खैर, तो जैसे हर एक तबके में अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे मुफ्तियों में भी उलमा में भी। हाँ, तो मैं एक बात ये कर रहा था, अलबत्ता बाज दफा एक आदमी इल्म में मजबूत और पुख्ता नहीं होता, उसकी नीयत फितना फैलाने की नहीं होती मगर उसके अमल से फितना फैल रहा होता है, क्योंकि उसको अल्लाह ने फिकही बसीरत नहीं दी होती। बाज दफा इल्म कामिल नहीं होता, बाज दफा इल्म कामिल होता है, फिकही बसीरत नहीं होती। तो ये लोग फिर इखलास से फितना फैलाते हैं, समझ रहे हैं बात को? ये क्या करते हैं, इंतहाई इखलास से फितना फैलाते हैं। इसकी मिसाल है जैसे माजी में जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जो बगावतें हुई हैं तारीख में, उन बगावतों से मुसलमानों में तफरीक पैदा हो गई, लेकिन बगावत करने वालों की नीयत क्या थी, अच्छी थी, मुखलिस थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि नहीं अनिल मुनकर का हुक्म शरीयत में उस वक्त है जब नहीं अनिल मुनकर की ताकत और कुव्वत भी हो। अगर आप ताकतवर को तलवार के जोर से गुनाह से रोकने की कोशिश करेंगे तो वो गुनाह से नहीं रुकेगा, वो नेक लोगों को जितने रहे सही उनकी ताकत है उसको भी खत्म कर देगा। तो हर बात हर मौके पर कहने की नहीं होती और हर अच्छा काम हर मौके पर करने का नहीं होता, उसके लिए हिकमत मसलहत बसीरत। बाज लोगों में हिकमत और मसलहत नहीं होती, हिकमत और मसलहत की जगह भी इखलास ही भरा हुआ होता है, तो हर जगह दीन की बात कह देते हैं जाके, और ऐसे मौके पर कहते हैं कि वो फायदे के बजाय نقصان ہو جاتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ایک ملفوظ بہت اہم, وہ فرماتے تھے کہ اگر صحیح بات میں چند باتوں کا خیال کیا جائے کہ صحیح بات کہنے والے کی پہلے تو نیت صحیح ہو, اس کا مقصد نیکی پھیلانا ہو, کسی پہ طنز کرنا نہ ہو. نمبر دو, بات کرنے کا طریقہ بھی وہ صحیح اختیار کرے, شائستہ لہجہ ہو, نرم لہجہ ہو, خیر خواہی والا لہجہ ہو. نمبر تین, بات کے لیے جو ابھی مجھے پورے ان کا ملفوظ یاد نہیں, اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ بات کے لیے جو الفاظ ہیں نا, الفاظ ان کا انتخاب بھی کیا ہو, مناسب, اور وقت بھی مناسب ہو. نہیں یاری بات سمجھ میں, ہر وقت ہر بات کہنے کی وقت بھی مناسب ہو, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اچھی بات سامنے والے پر اثر نہ کرے. اکثر جو سامنے والے پر اچھی بات اثر نہیں کرتی, اس کی چند وجوہات, یا تو آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی, طنز کرنا مقصد ہوتا ہے لیکن لیول اس پہ نصیحت کا لگاتے ہیں. یہ پھر موضوع لمبا ہو جائے گا, میں ابھی ادھر ہی دوبارہ آتا ہوں وہاں جو میں موضوع چلا رہا تھا. تو محترم نے جو جواب دیا, لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ کیوں بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ پاکستان سے جب بھی کوئی شخص مسجد نبوی میں آ کے بیان کرے گا وہ صحیح ہی کرے گا؟ کہیں کوئی حدیث ہے ایسی؟ ہے بھائی, یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو محترم نے پہلا مسئلہ کیا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, رکوع میں سے اٹھتے ہیں, یہ چار مسئلے میں نے سنے. پھر میں مزید بھی پورا مغرب تک یہی چلتا رہا, مگر میں اٹھ کے چلا گیا. لوگوں نے بتایا کہ یہ پروگرام چلتا ہے یہاں پہ, اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ رکوع میں جانے کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں یا ہاتھ باندھنے. تو محترم نے مسئلہ بتایا کہ ہاتھ باندھنا ہے, سوری, رکوع سے اٹھنے کے بعد. جب آپ رکوع میں گئے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں, تو محترم نے مسئلہ بتایا کہ ہاتھ چھوڑنے کے بجائے کیا کرنا ہے, ہاتھ باندھنا. اور دلیل میں بخاری کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہاتھ باندھا کرتے تھے. تو رکوع میں اٹھنے کے بعد جب ہم سیدھے ہوتے ہیں, وہ بھی تو قیام ہی ہے نا, قیام کا مطلب کھڑے ہونا, لہذا یہ حدیث اس کو بھی شامل ہے. اب حدیث سے تو مسئلہ بیان کر دیا محترم نے اپنے خیال کے مطابق, اس کو قیام قرار دے دیا, حالانکہ اس قیام سے اصطلاحی قیام مراد ہے, کیونکہ اس پر امت کا اجماع چلا رہا ہے صدیوں سے کہ ہاتھ رکوع میں جانے کے بعد سب ہاتھ چھوڑتے ہیں. خیر, اختلافی مسئلہ ہے, اگر وہ ہاتھ باندھ بھی لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ, لیکن امت کا جو تواتر چلا رہا ہے وہ کیا ہے, ہاتھ چھوڑنے کا. اب حدیث سے محترم نے مسئلہ بیان کیا کہ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنا ہے, چھوڑنا نہیں, حدیث سے ثابت کر دیا. تو اب اسی کو فوکس کرنا چاہیے کہ بس یہی صحیح ہے, اس کے علاوہ کیا ہے, غلط ہے. لیکن محترم نے کہا اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ علماء سعودیہ میں اکثر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں رکوع میں جانے کے بعد. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے مسجد حرام کے امام جو ہیں وہ بھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں رکوع میں جانے کے اٹھنے کے بعد جو ہے مسجد نبی. تو لہذا دوسری رائے کو بھی بڑے احترام سے بیان کیا, جبکہ اس پہ کوئی دلیل نہیں دی. مگر آگے مسئلہ آیا امام مالک کا, بالکل اس سے ملتا جلتا, کہ قیام میں ہاتھ چھوڑنے ہیں یا ہاتھ باندھنے ہیں. امام مالک کو فالو کرنے والے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے مسجد حرام میں بھی دیکھا ہوگا, مسجد نبوی میں بھی دیکھا ہوگا, لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. محترم نے یہاں بیان کیا, کسی نے پوچھا کہ مالکی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ قیام میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ محترم نے کہا نہیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ گنجائش اس کی بھی ہے, یہاں کیا کہا, نہیں. اور کہنے لگے کہ موطا امام مالک میں امام مالک نے خود یہ دلیل پیش, یہ تو میں بڑے آرام سے بیان کر رہا ہوں تمیز سے, وہ اس طرح نہیں بیان کر رہا, وہ بہت چیخ چیخ کے, میں چیخوں گا تو پھر میں ویسے ہی نہ بن جاؤں کہیں, مجھے تھوڑا سا یہ ڈر لگ رہا ہے, اس لیے میں تو اس کو ذرا آرام سے ہی بیان کر رہا ہوں, لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا جیسے وہ, جب تک وہ ماحول کریٹ نہ کیا جائے نا تو پھر تو بات تو جب ہی بنے گی. محترم فرما رہے تھے کہ موطا امام مالک میں امام مالک نے خود یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں ہاتھ باندھے ہیں, لہذا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, اور ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, امام مالک کا نہیں پڑھا. تو میں نے کہا کہ یہی بات پہلے والے مسئلے میں بھی تو اسی طرح سے بیان کرنی چاہیے تھی محترم کو کہ ہم نے علماء سعودیہ کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی کا. وہاں گول کر گیا, نہیں ہے بات. جہاں امام مالک کے مسلک کی بات آئی ہے تو امام مالک اس کے کیا لگتے ہیں بھائی, وہ تھوڑی پیسے دے رہے ہیں اس کو, یہاں تنخواہ وہ تھوڑی دے رہے ہیں. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ باتیں کرنا, لیکن بہت بڑا طبقہ حاجیوں کا, سب سے زیادہ حاجی اردو بولنے والے ہیں. پتا ہے آپ کو یہ بات, سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے اردو اسپیکنگ ہیں. یہ اردو زبان والوں کے لیے بھی ایک, یعنی چاہے وہ پنجاب سے ہوں چاہے وہ پٹھان ہو, لیکن وہ اردو تو بولتے ہیں نا. بہرحال اردو سے مراد یہ نہیں کہ اردو اسپیکنگ, جو اردو سمجھنے اور اردو بولنے والے لوگ, وہ پورے پاکستان میں پورے انڈیا میں پائے جاتے ہیں. جب یہ لوگ جا کے وہاں اس قسم کی باتیں سنیں گے تو اسلاف سے بدگمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, سمجھیں گے وہ سارے لوگ امام مالک جیسے لوگ اور امام ابو حنیفہ جیسے لوگ, وہ تو بےچارے کچھ بھی نہیں تھے. اصل تو یہ ہے, یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, یہ ہے جس کو فالو کرنا چاہیے ہمیں, جو 15ویں صدی کا یہاں بیٹھا ہوا ہے. بھائی آپ نے جس طرح سے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ اعتدال سے بیان کیا, اپنی رائے کو بیان کر دیا اور دوسری رائے کا بھی احترام کیا کہ بھائی وہ بھی ٹھیک, تو ایسے ہی آپ امام مالک کے مذہب کو بھی بیان کر سکتے تھے کہ بھائی حدیث میں چونکہ ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے قیام میں, امام مالک کی رائے اس کے خلاف ہے, ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی, بہت بڑے مجتہد تھے, لہذا ہماری رائے کے مطابق تو سنت یہی ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے اور کسی مجتہد کو فالو کر رہا ہے تو اس پہ بھی طنز نہ کیا جائے, کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نا. تو محترم نے دلیل کیا دی کہ ہم حدیث کو فالو کریں گے, ہم نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, امام مالک کا نہیں پڑھا. مجھے خیال ہوا میں اس سے پوچھوں کہ امام مالک نے کس کا کلمہ پڑھا تھا, تجھے یہ بات معلوم ہے کہ تُو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے امام مالک کا نہیں, لیکن امام مالک تو اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی نے ہاتھ باندھے ہیں, پھر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز کا حکم دے رہے ہیں, تو ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور اس حدیث کا کوئی جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے, امام مالک کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. امام مالک کی سمجھ میں آ گئی مگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بھائی امام مالک کے مذہب کی بھی دلیل ہے, اس کو بھی بیان کرو, اور وہ دلیل امام مالک کی یہ ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو امام مالک کی رائے یہ تھی کہ اہل مدینہ نے نبی کی آخری نماز کو چونکہ فالو کیا ہے, لہذا وہ بھی اس کو حدیث ہی کا درجہ دے رہے ہیں. لیکن یہاں محترم نے کیا کر دیا, کتنا بڑا طبقہ ہے وہاں پر جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, جو عرب بھی ہیں اس میں, وہ چونکہ اردو جانتے نہیں لہذا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارے خلاف کیا بول رہے ہیں محترم, ورنہ وہ پکڑ لے جا کے اس کو. تیسرا مسئلہ, ہم بھی ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, مگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والوں کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے, وہ بھی ایک مجتہد کو فالو کر رہے ہیں. تیسرا مسئلہ رفع الیدین کا بیان کیا, وہ تو ان کا خاص موضوع ہے, اس میں محترم نے بیان کیا کہ رفع الیدین وہی جو وہ چلتا رہتا ہے, تو یہ دماغ بھی پک جاتا ہے یہ مسئلے بیان کر کر کے, تو اس میں جناب وہ یوں ہے تو ہاتھ چھوڑ کے رفع الیدین تو ثابت ہے, تو اس میں چونکہ فقہ حنفی پر طنز ہو رہا تھا تو وہ ماشاءاللہ ان کو پھر اس میں جو مزہ آتا ہے, کیونکہ انڈین اور پاکستانی 99% فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں, پھر تو وہ بھر بھر کے, یہ تو ہمارے ہی پنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے ہی گرائی ہیں, ان کو تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے امام حنیفہ, ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں, بس نہیں چل رہا تھا, مگر کیوں نہیں دیتے کہ یہاں پھر گورنمنٹ پکڑ لے گی ان کو, حکومت سعودیہ پکڑ لے گی, تو بالکل ہی کھلی نافرمانی ہو جائے گی نا, ورنہ بس نہیں چل رہا تھا. تو آپ لوگ تھوڑے سے ہوشیار رہیں, جب حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کمپلین کریں اس کے خلاف, کچھ لیٹر ویٹر لکھیں, ہم نہیں لکھ سکتے, ہمارے لیے کچھ مجبوریاں ہیں. आप लोग ये काम कर सकते हैं। कोई मारधाड़ वाला, कोई तशद्दुद वाला रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, वो अल्लाह का घर है, मस्जिद नबी है, क्योंकि बाज लोगों ने पकड़ के कुटाई भी लगाई है, सुना है उसकी मस्जिदी में पकड़ के, लेकिन वो पिट जाता है, आगे बात जाने नहीं देता, ठीक है ना। होना तो चाहिए जब पिटे तो आगे कंप्लेन करवाए, इसने मुझे पीटा है, तो फिर हुकूमत के अहलकार बुला के पूछेंगे क्यों मारा, तो फिर ये बताएगा, तो फिर बात बढ़ेगी आगे। तो ये सब्र और तहम्मुल के साथ पिट जाते हैं मगर बात आगे नहीं जाने देते। तो इसलिए ये हरकतों की कोशिश ना करें, जो कानूनी तरीका है। जब कई लोग लेटर लिखेंगे, कई लोग लिखेंगे भाई हम यहां अपने फिकही मसलक के खिलाफ बयान सुनने के लिए नहीं आते, हिंदुस्तान में जो मजहब आया है, मोहम्मद इब्ने कासिम आए, और हिंदुस्तान में जो मजहब पूरे बर्रे सगीर में, जिसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बुखारा और समरकंद भी है, ईरान भी है, और ये इराक का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ये जब से इस्लाम यहां आया है फिकह हनफी ही आया है, और वो कुरान और सुन्नत ही को लेकर आए थे यहां पे, सिर्फ तलवारें और घोड़े नहीं लेकर आए थे, बाकायदा कुरान और सुन्नत को लेकर आए थे। तो ये तरीका सही नहीं है। एक साहब आए मेरे पास तलाक के मसले में, वो जो मशहूर मसला है, तीन तलाक, एक होती एक तीन होती, बड़ा इख्तलाफी मसला चल रहा है। तो वो मैं जो कह रहा हूं ना, ये जब भी ये कोई कहे ना हमने कलमा नबी का पढ़ा है फला का नहीं पढ़ा, तो उसको ये जवाब दिया करो, वो तीन तलाक के मसले में उन्होंने हदीस पेश की कि तीन एक होती है, और हदीस थी अब्दुल्ला बिन अब्बास की। तो मैंने कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो फतवा दिया है वो तो सही सनद से यही है कि तीन तीन ही होती हैं। मेरा मकसद ये था कि इस हदीस का ये मतलब नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अब्बास जब खुद तीन को तीन करार दे रहे हैं, इसका मतलब वो खुद अपनी हदीस का ये मतलब नहीं लेते जो आप ले रहे हैं। तो आपकी फहम गलत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास की फहम सही है, आपकी समझ गलत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हदीस के रावी हैं उनकी समझ सही है। तो मैंने कहा जो आप हदीस पेश कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा तो ये नहीं है, वो तो कह रहे हैं तीन तीन ही होती हैं। तो वो मोहतरम जवाब में कहते हैं हमने कलमा नबी का पढ़ा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास का कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि ये बात आपको मालूम है कि हमने नबी का कलमा पढ़ा, अब्दुल्ला बिन अब्बास का नहीं, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने खुद किसका कलमा पढ़ा था? अगर अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नबी का कलमा पढ़ा तो फिर वो नबी के कलमे के खिलाफ फतवा क्यों दे रहे हैं, यानी नबी के फतवे के खिलाफ फतवा क्यों दे रहे हैं? और अगर अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नबी का कलमा नहीं पढ़ा तो ये बात आप लिख के दे दें कि फलां सहाबी रसूल ने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, ठीक है ना। आपको तो फिर इसका मतलब अब्दुल्ला बिन अब्बास के ईमान पर ही शुबा है, इतने मशहूर सहाबी। तो मैंने कहा फिर एक ही बात रह जाती है कि आपने भी नबी का कलमा पढ़ा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी पढ़ा, लेकिन कलमे का सही अब्दुल्ला बिन अब्बास जो मतलब समझे, आप उसका मतलब कुछ और समझे। तो ये हदीस का और अब्दुल्ला बिन अब्बास का इख्तलाफ नहीं है, ये हदीस को समझने में आपका और अब्दुल्ला बिन अब्बास की राय का इख्तलाफ है। नहीं आ रही बात समझ में? तो जब भी कोई हदीस के खिलाफ इस तरह बड़े बड़े आइम्मा किराम के उसको पेश किया करें तो उसको ये जवाब दिया करें, भाई हदीस का मफहूम एक वो है जो आप बयान कर रहे हैं और एक वो मफहूम है जो इन आइम्मा किराम ने बयान किया है। तो ये इख्तलाफ इमाम और हदीस का नहीं है, ये इख्तलाफ आपका और इमाम की राय का इख्तलाफ है, यानी आपकी राय कुछ और है हदीस को समझने में और इमाम की राय कुछ और थी। तो हम आपकी राय के बजाय हदीस को समझने में इमाम की राय को फॉलो करेंगे। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल भाई। जब इमाम अबू हनीफा की बात आए या इमाम मालिक की बात आए तो जब कोई कहे ना देखो इमाम मालिक का कौल ये और हदीस में तो ये आता है, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? हदीस की तशरी एक वो है जो उनसे मनकूल है और एक वो है जो आप बयान कर रहे हैं, तो हम उस तशरी को लेंगे जो वो बयान कर रहे हैं। तो हम हदीस को छोड़ नहीं रहे बल्कि हदीस को समझने में, हदीस को लेने में फला की राय को आपकी राय पर तरजीह दे रहे हैं, और यकीनन फला की राय आपकी राय से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप 15वीं सदी के हैं और वो ताबईन और तब ताबईन की फहरिस्त में थे वो लोग। तो ये मसला है हमारे मुआशरे में, इस तरह के मौलाना लोग पाकिस्तान में बहुत वाफर मिकदार में, पाकिस्तान में याद रखो दुनिया की हर कोई भी चीज थोड़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें तो दुनिया में हर जगह होती हैं। जैसे पाकिस्तान में फल फ्रूट आपको थोड़े नजर आते हैं, है भाई? क्या हो गया भाई? ठेले पे जब भी जाओ तो आपको कीनू का मौसम आएगा तो कीनू ही कीनू नजर आएंगे, सेब का मौसम आएगा तो सेब ही सेब नजर आएंगे। तो मौलवियों का भी सीजन चलता है, ठीक है। और सीजन के लिहाज से भी कुछ नए नए मौलवी मार्केट में आते हैं, तो वो भी थोड़े रबीउल अव्वल के अलग किस्म के मौलाना लोग हैं। रबीउल अव्वल आएगा तो आपको सफेद रंग गायब हो जाएगा, हम लोग को नजर ही नहीं आएंगे कि कोई अलफलाहिया मस्जिद भी है, कोई इमाम भी है वहां के, गायब। आपको दूसरा चैनल बहुत बड़ी तादाद में ऐसा लगेगा, कोई बाज लोग आते हैं दूसरे मुल्क से सफर करके पाकिस्तान में रबीउल अव्वल के महीने में, कहते हैं यार यहां सारे बरेलवी हैं। मैंने कहा अभी रबीउल अव्वल गुजरने दो, सारे देवबंदी हो जाएंगे, मुहर्रम आएगा तो सारे शिया हो जाएंगे, सारे शिया हो जाएंगे, सब मरसिए रक्षे वाले भी उधर सहरोजा लगा के आया है, तबलीग में 3 दिन लगा के आया, मुहर्रम में मरसिया लगा के इमाम हुसैन का जो है ना वो मरसिया लगा के घूम रहे हैं, ढोल ढमक के वो थप चल रहा है। सीजन के लिहाज से चल रही है चीजें, हकीकत है ये। रबीउल अव्वल में सब झंडियां लगा रहे हैं इल्ला माशाल्लाह, मुहर्रम में सारे शिया बन जाते हैं, रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें सारे क्या बन जाते हैं, थोड़े दिनों के लिए मुसलमान बनते हैं हकीकी मानों में, मुसलमान गुनाह गुनाह छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ख्याल करते हैं। खातून का फोन आया मेरे पास कि मेरे मियां दुबई में एतकाफ में बैठते हैं मस्जिद में, सारा साल ड्रामे फिल्में देखते हैं, रमजान में भी देखते हैं, लेकिन जब एतकाफ के लिए जाते हैं तो केबल निकाल देते हैं कि भाई आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, और कहते हैं कि जैसे ही चांद नजर आएगा तो खुद से पहले से लगा देना केबल। मैं एतकाफ के बाद जब घर आऊंगा तो मैं खुद ये गुनाह नहीं करना चाहता, मेरा एतकाफ खराब ना हो जाए, इसलिए ये गुनाह तुम अपने सर लेके केबल लगा देना, मैं सिर्फ बैठूंगा टीवी के सामने आके। वाह भाई वाह, एक अच्छा पहलू भी है बुरा पहलू, बुरा तो यह कि भाई क्यों लगवा के जा रहे हैं, लेकिन अच्छा पहलू भी है कि चलो आखिरी अशरे को तो थोड़ा सा ख्याल किया, केबल निकाल दो वहां से। फरिश्तों को हिसाब किताब में कितनी परेशानी होगी कि इसको कहां भेजूं, मैं जन्नत में भेजूं जहन्नम में भेजूं, नेकियां ज्यादा है कौन कौन से। ये रिमोट कंट्रोल का सिस्टम जब तक नहीं ईजाद हुआ था, हमारे एक रिश्तेदार हैं उन्होंने किसी के हवाले से बताया कि कहते मैं परेशान होता था कि ये मौत का जो फरिश्ता है इसके जिम्मे अल्लाह ने लोगों की रूह कब्ज करना लगाया है, तो ये कितने लोगों की रूह कब्ज करता है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर, तो एक एक वक्त में 6-6 लोग मर रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया में बेचारा थक जाता होगा। ये आज ऑर्डर आया वहां से 6 आदमी उठाने, उधर से कराची में तो पूरी पूरे बसें उठा के ले जाता है, कराची में तो बंदे होलसेल के हिसाब से जाते हैं, बम फटा अल्लाह बचाए वो सारे ही मर गए, तो ये कितना परेशान होता होगा। कहते जब रिमोट कंट्रोल ईजाद हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि भाई साइंस ने इतनी तरक्की की है कि यहीं बैठे बैठे बटनों से काम हो रहा है, तो फरिश्ते को भी अल्लाह ने पकड़ा दिया होगा बटन, है भाई सिर्फ नंबर डाल दे और लोकेशन डाल दो उसमें, बंदा खुद ही रूह खिंच के आ जाएगी उसमें। तो इसलिए हैरान नहीं होना चाहिए, जब साइंस इतनी तरक्की कर सकती है तो अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह के दरबार में रहने वाले फरिश्ते, उनको भी तो कुछ पता होगा ना, उनको के पास भी तो कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म होगा। तो पाकिस्तान में हर चीज बे इंतहा है, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, मैंने बताया ना फिरके बहुत है यहां पर। आप अरब में जाए, मैं तीसरा चक्कर मेरा सऊदी अरब का लगाए, एक आध दूसरे शहरों में भी जाना हुआ, नमाज के आपको 10 तरीके नजर आएंगे, कोई नाफ पे हाथ बांध रहा है, कोई सीने पे हाथ बांध रहा है, कोई जोर से आमीन कह रहा है, कोई आहिस्ता आमीन कह रहा है, कोई हाथ छोड़ रहा है, कोई हाथ बांध रहा है, कोई सजदे में जाने के बाद पहले बैठता है फिर खड़ा होता है, कोई डायरेक्ट खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, कोई इमाम के पीछे चुप रहता है, कोई फातिहा पढ़ता है, मगर सब आएंगे, कोई इख्तलाफ नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई जमातुल मुस्लिमीन ऐसी नजर नहीं आएगी जो इस उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए तंजीम बनी हुई हो वहां पे कि सारे फिरका परस्त हैं, हम सबको इस्लाम में दाखिल करेंगे, ऐसी कोई ड्रामेबाजी आपको वहां पर नजर ना जमातुल मुस्लिमीन का पार्ट 1 नजर आएगा, ना पार्ट 2 नजर आएगा, ना सुना है पार्ट 3 भी पैदा हो गया, कोई भी नजर नहीं आए, क्योंकि हुकूमत का डंडा है। समझ में आ रही है बात, इससे क्या पता चलता है, ये जो फिरकावारियत का इल्जाम मौलवियों पे लगाया जाता है ये गलत है। फिरकावारियत को कंट्रोल करना किसके हाथ में है, हुकूमत के हाथ में है, कि जो मौलवी इस किस्म की तकरीरें कर रहा है उसको पकड़ के बंद कर दो, سوال پیدا ہوتا ہے مسجد نبی کے فلاں مولوی کو بند کیوں نہیں کیا جس کے خلاف میں بیان کروں؟ بند اس لیے نہیں کیا کہ کوئی کمپلین کرنے والا نہیں ہے اس کے خلاف، وہ اردو میں بیان کر رہا ہے، عرب اردو نہیں جانتے. میں نے خود ایک بیان سنا، اس میں ایک عرب عالم نے بیان کے جو الفاظ تھے وہ کچھ اور تھے اور اس نے ترجمہ کچھ اور کیا. بیان میں عرب نے امام ابو حنیفہ کا نام لے کے ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا، ان کی تعریف کی، اور پورے محترم نے ترجمے میں یہ پورا واقعہ ہی گول کر دیا. یہ بغض ہے دلوں میں، نفرت ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. میں کسی خاص مسلک پہ طنز نہیں کر رہا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں بھی ہے. یہ صرف مسجد نبی میں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو اردو میں فتنہ پرست بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کو پاکستان میں ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ملیں گے. ہمارے ہاں ہمارا ہاں سمجھتے ہیں، حنفیوں میں ایسے ملیں گے آپ کو، وہ بھی طنز کرتے ہیں، وہ بھی فتنہ پھیلا رہے ہیں، وہ بھی. میں ایسے دیوبندیوں کو بھی جانتا ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا ممبر پہ نام لینا یہ دیوبندی ولیلوی، لیکن کیونکہ لوگ وہ اسی نام سے اور اسی حوالے سے مشہور ہیں اس لیے میں وضاحت کے لیے کہ وہ اپنے مسلک کے دفاع میں اگر ان کو کوئی بات نظر آئے کہ بھائی ہمارے اکابر سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، تو ان کی عادت ہے کہ اس غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو کھینچ تان کے توڑ مڑوڑ کے اس پہ لے کے جائیں گے تاکہ پبلک میں شہرت ہو جائے، لوگ کہیں ماشاءاللہ اپنے مذہب کا دفاع کرنے والا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اب یہ جو دعا ہے وہ بھی صومی غدن نویتو من شہری رمضان، رمضان میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، وہ بھی صومی غدن نویتو، یہ نیت ہے، تو یہ غلط ہے. اس کا نہ قرآن و سنت کے اس کا کوئی ثبوت ہے، اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور رمضان میں ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھے سحری کھانے کے لیے، تو روزہ ہی رکھنے کے لیے تو کھا رہے ہیں، ورنہ کسی کا دماغ خراب ہے 4 بجے اٹھ کے ناشتہ کرے گا وہ، کیا خیال ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی پاگل دیکھا آپ نے جو 4 بجے روزہ نہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہو اٹھ کے کہ میرا روزہ نہیں ہے لہذا میں آج 4 بجے کھاؤں گا؟ بھائی 4 بجے کھانا یہ نیت ہی ہے، اور مضبوط دل میں ارادہ کر لے. اور کوئی وسوسوں کا مریض ہے، اس کے لیے علماء نے کہا کہ زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی وسوسے ہیں کہ پتہ نہیں، پاگل لوگ بہت ہوتے ہیں نا دنیا میں، وہ سوچتا رہے گا سارا دن پتہ نہیں میری نیت تھی کہ نہیں تھی. تو ایسے پاگلوں کے لیے فقہا نے لکھ دیا کہ زبان سے بول دے میرا روزہ ہے، یہ پاگلوں کے لیے. اصل حکم یہ نہیں ہے، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے. صحابہ تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے. نماز میں آپ دیکھ لیں پیچھے وہمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر کے ساتھ والے کی نماز بھی خراب کر دیتے، میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں ظہر کے چچت 4 فرض. میں ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنی میں نے چھوڑ دی، وہ جب بھی میرے ساتھ آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت کیسے کرتا تھا؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے. او بھائی اس سے تو نماز آسان ہے، نماز پڑھنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی اس کی نیت کے الفاظ اور آپ نے جو اس کو یاد کر کے آئے ہوئے. وہ بھائی ظہر پڑھنے ہی تو آئے ہو یہاں پہ، اور کیا کرنے آئے ہو؟ تو نہ نماز میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، دل میں یہی ارادہ ہے ظہر پڑھ رہا ہوں اور امام ہی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ورنہ ادھر جا کے پڑھتا نا، ادھر صف میں کیوں کھڑا ہوتا؟ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، ہمارے استاد نے واقعہ سنا، ایک وہمی آ کے کھڑا ہوا، وہ نیت کیا کر رہا ہے، یہ میں جہاں سے بات ہے نا وہ پکڑ کے رکھے، وہ بھی صومی غدن نویتو والی بات سے پھر وہ موضوع ادھر کا ادھر نکل جاتا ہے. وہ وہمی آگے کھڑا ہوا، نیت کیا کر رہا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے. تو بھائی اللہ ہی کے واسطے، بھگوان کے واسطے تو نہیں ہو رہی نا یہ نماز، آپ واسطے اللہ کے اور فلانے کے اور یوں کے اور پیچھے اس امام کے. اب پہلے تو اس نے ہاتھ کے اشارے کے بغیر بولا پیچھے اس امام کے، اسے خیال ہے کہ اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو نشانہ خطا بھی جا سکتا ہے. تو میری دل میں نیت یہی والا تھا جو مسلے پہ کھڑا ہوا ہے، یا دل میں کوئی اور تو نہیں تھا؟ تو متعین ہونا چاہیے، لہذا ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا اس امام کے. اب جب آپ کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو انگلی بھی تو قدرتی طور پہ تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا، تو چونکہ یہ تھوڑا صف میں دور کھڑا ہوا تھا تو اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ نشانہ بالکل اسی بندے کی طرف پتہ نہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ऐसा तो नहीं कि दाएं बाएं निशाना खता हो गए, रफी भाई पे लग रहा हो जाके या मौजिन साहब पे लग रहा हो जाके, तो ये तो नमाज गलत हो जाएगी। तो और करीब जाके बोला इस इमाम के, फिर भी शुबा हुआ कि भाई उंगली में थोड़ा सा कर्व है, गोल है थोड़ी सी, तो जाके ना इमाम को यूं करके धक्का मारा पीछे इस इमाम के। ये वहमियों वहमी लोग अगर ये करें ना करें तो सबकी ख्वाहिश बहरहाल यही होती है कि बिल्कुल मुतायन हो जाए। तो ऐसे पागलों के लिए, ऐसे अहमकों के लिए फुकहा ने लिख दिया, मुस्तहसन करार दे दिया। इतना तो नहीं कि यूं जाके करे कि भाई जबान से बोल दो जोर पड़ रहा हूं, लेकिन असल मसला ये नहीं है। लिहाजा जबान से नीयत को सुन्नत करार देना या उसके दिफा में दलाइल बयान करना हमाकत और बेवकूफी है, जहालत की बात है ही नहीं। तो इसी तरह जबान से नमाज जनाजा की नीयत करना, लोग ईद की नमाज से पहले नीयतें याद करके आते हैं, ईद खुद एक मुश्किल नमाज है और फिर उस पर नीयत याद, भाई ईद ही की तो नमाज है और क्या, क्यों आ रहे हो अभी नहा धो के, क्या करने आ रहे हो, जनाजा पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे, जनाजा पढ़ने के लिए इतने नहाने धोने की खुशबू लगाने की क्या जरूरत है, ये तो जनाजे की तौहीन नहीं है। वो कहेगा मैं मर गया और तुम जनाब स्प्रे करके करके आ रहे हो, खुशबूएं लगा के आ रहे हो। लेकिन हमारे यहां बाज खतीबों के बयान मिलेंगे, वो भी सौमी गदीन नवई तुम इंशाही रमजान पर दलाइल मिलेंगे आप, तो ये गलत है, क्यों दलाइल दे रहे हो उसके। हमारे बाज अकाबिर ने लिख दिया तो बोलो भाई उन्होंने लिख दिया कि थोड़ा सा वहमियों के लिए उर्दू के बजाय अरबी में लिख दिया कि वहमी लोग समझते हैं अरबी में पढ़ने से नमाज ज्यादा कबूल होती है नियत अरबी में करने से, तो ये सही नहीं लिखा। किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी जायज नहीं है, खता हर एक से हो सकती है, लेकिन ये कि बात को तो उसकी नहीं ली जाएगी ना जो बिल्कुल कोई उस पर कोई रिवायत ही ना हो। आइमाए मुश्तहिदीन का जो इख्तलाफ हुआ है वो ऐसा नहीं है कि हदीस के खिलाफ जाता हो, वो हदीस को समझने में इख्तलाफ है। बाद के लोगों में बाज लोगों ने जो इख्तलाफ किए उनमें बहुत से कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। हम मुश्तहिद को फॉलो करने का हुक्म देते हैं, बाद के लोग चाहे कितना बड़ा आलिम हो कितना बड़ा मुफ्ती हो उसको नहीं, वो उसकी इतिबा की हमें इजाजत नहीं है। अगर वो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रही है उसकी बात को, कुछ मिलता ही नहीं है उसका तस्किरा। तो अब बाज लोग क्या करते हैं अपने मसलक के दिफा में, वो भी सौमी गदीन नवई तुम इन शहरी रमजान पर पूरा जो है वो तकरीर कर देंगे। इसी तरह एक बात याद रखें, ये बात कहते हुए तो बड़ा डर लगता है लेकिन बता दूं, ये जो फराइज के बाद इज्तिमाई दुआ है, एक साहब आए वो किसी अहले हदीस को लेकर आ गए मेरे पास, कहने लगे ये लोग कहते हैं कि ये फर्ज के बाद हाथ उठा के इज्तिमाई दुआ करना कहीं भी साबित नहीं है, तो हजरत आप दलाइल दें, ये तो हमारे मसलक पे कीचड़ उछाला जा रहा है, ये तो बिदत है, तो हम क्या इसका जवाब दें। तो मैंने कहा इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, जवाब होगा तो देंगे, ठीक है। मैंने कहा कहीं भी नहीं है कुरान और सुन्नत में फर्ज नमाज के बाद हाथ उठा के इज्तिमाई दुआ, जब नहीं है तो मैं क्यों उसका दिफा करूं खाम खाम। तो हजरत ये तो पूरे हिंदुस्तान में रिवाज है, मैंने कहा ये रिवाज पड़ गया है अब छूटना, मैंने कहा मैं भी मांगता हूं, क्योंकि पब्लिक का दिमाग ऐसा बन गया है कि लोग ये कहते हैं दुनिया छोड़ दो मगर ये दुआ नहीं छोड़ो, यानी मुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने अपनी मस्जिद में इतना कर लिया है कि जहर को खत्म कर दिया है, यानी ऊंची आवाज से नहीं मांगता, वरना आम तौर पे मस्जिदों में फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ भी होती है ऊंची आवाज से भी होती है। मैं क्या करता हूं, आहिस्ता से करता हूं और इज्तिमाई नहीं करता। तो यहां तक आ गए ये भी गनीमत है ना, अब एकदम से एक चीज के खिलाफ चलेंगे तो फितना पैदा होता है उससे। लेकिन इसका कोई कुरान और सुन्नत में सबूत नहीं, और फिकह हनफी में भी सबूत नहीं है इसका, फिकह हनफी में भी नहीं है कहीं ये। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप जाके इमामों को छेड़ना शुरू कर दें। नमाज के बाद अगर कोई ऊंची आवाज से इज्तिमाई दुआ मांग लेता है वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन मांगने पर जो फितना खड़ा करना जाके उसको दिखाना, वल फलाहिया मस्जिद के मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है आप तो बिदत कर रहे हैं, आप तो यूं हैं, और बेचारा इमाम जिसके पीछे 20-20 साल से नमाजें पढ़ रहे हो उसकी फिर तौहीन शुरू कर देते हैं, उस पर जहालत के फतवे ठोकना शुरू कर देते हैं। ये फतवे ठोकना या इस तरह से फितना फैलाना ज्यादा बुरा है बनिस्बत दुआ इज्तिमाई दुआ मांग लेने के, इसलिए मसले की हद तक बता रहा हूं। लेकिन किसी मस्जिद में जाके फितना फैलाने की कोशिश बोल लो ना भाई, ये मसला किसी इमाम को बताएं भी नहीं जाके, वो मेरे मुकल्लिद नहीं है, उन्होंने तहकीक करनी होगी खुद से कर लेंगे, समझ रहे हैं, वो खुद देख लेंगे। आप बस जाए नमाज पढ़े और पतली गली से निकल जाएगा, और जब तक दुआ हो रही हो तो मुंह नीचे करके बैठे भी रहा करें। बाज लोग मसला हमसे पूछ लेते हैं कि फर्ज के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, जैसे इमाम साहब ने सलाम फेर के दुआ मांगने से फौरन खड़े होकर सामने ही सुन्नतें शुरू कर दी, ये बताने के लिए कि फराइज के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है। अब हर आदमी इनको देख रहा होता है ये क्या कर रहा है। तो उम्मत में तोड़ पैदा करना ये भी तो एक बिदत है कि नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की इज्तिमाईयत को बरकरार रखने के लिए बाज ऐसे काम भी किए हैं जो बजाते खुद दुरुस्त नहीं थे, लेकिन इज्तिमाईयत को बरकरार रखने के लिए उनको दुरुस्त करार दे दिया। बहुत मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल। देखो बैतुल्लाह की तामीर जो अभी जो है ना, ये यहां तक नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह बनाया था, हतीम भी उसमें शामिल था। आपको बताएं, हम जब तवाफ करते हैं तो बैतुल्लाह की चार दीवारी के गिर्द नहीं घूमते, बल्कि चार दीवारी से थोड़ा लंबा चक्कर काटते हैं, जहां वो जैसे कौस नुमा हतीम बना हुआ है ना, तो हतीम के अंदर का एरिया भी कवर करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो भी बैतुल्लाह में शामिल है। लेकिन सवाल पैदा होता है, जब वो बैतुल्लाह में शामिल है तो नबी ने वहां तक तामीर क्यों नहीं की बैतुल्लाह की, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो वहीं तक तामीर की थी। हुआ ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले अरब ने बैतुल्लाह की तामीर का इरादा किया। मसला समझे खूब अच्छी तरह, इससे आपको उम्मत में इत्तेफाक और इत्तेहाद की अहमियत का अंदाजा होगा। हमारे यहां जिसके सर पे भी टोपी आई और दाढ़ी आई, वो एक एटम बम बन के मुआशरे में काम करना शुरू कर देता है। दीन फैलाता भी है, लेकिन साथ साथ फितने भी फैलाता है। दीन फैलाओ मगर बड़ों का एहतराम भी हो, छोटों पे शफकत भी हो, मोहब्बत भी हो, और ऐसा नहीं हो कि आग लगा दे जाके, जहां भी जा रहे लोग भागे, यार आ गया ये बम मारेगा, ये फतवा झाड़ देगा मेरे ऊपर ही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, इन्होंने बैतुल्लाह की तामीर का इरादा किया। तो हलाल आमदन से इतनी तामीर हो सकी जितनी अब है, मजीद ईंटों के लिए और सीमेंट बजरी जो भी उस जमाने का था, उनके पास हलाल पैसे खत्म हो गए। तवाइफों की कमाई थी, जानी औरतों की कमाई थी, गाने बजाने वालियों की कमाई थी, इस कमाई को उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के घर पे नहीं लगाएंगे। वो काफिर और मुशरिक की बात कर रहा हूं। उन मुशरिकीन ने कहा कि हम ये कमाई अल्लाह के घर पे नहीं लगाएंगे, लिहाजा जितना हलाल से बनता है बनने दो, इससे ज्यादा छोड़ दो। अब कुछ वक्त गुजरा तो लोग उतने ही हिस्से को बैतुल्लाह समझने लगे। अगली नस्ल जब आई है तो वो समझने लगी कि बैतुल्लाह यहां तक है, तो उन्होंने वहीं तक उसको चार दीवारी यानी वहीं तक हो गई और छत डाल दी उसकी। छत तो पहले भी डाल दी थी, मगर ये कि उसको बस यहीं तक समझा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बैतुल्लाह को वहां तक ले जाऊं जहां तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उनको ये बात मालूम नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला बैतुल्लाह कहां तक था। अगर मैं इसकी दीवारें वहां तक लेके जाऊंगा तो लोग ये समझेंगे कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के बनाए हुए किबले को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील कर दिया, अपनी मर्जी का बैतुल्लाह बना रहे हैं ये। क्योंकि मुशरिकीन मक्का बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो मानते थे ना मुशरिक होने के बावजूद, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इरादा तर्क कर दिया। और उससे कोई शरई मसले पे फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि तवाफ तो बहरहाल पूरे पूरे का ही हो रहा है, ईंटों और दीवारों की बात है। तो फितने से बचाने के लिए लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, बातें चलेंगी ये क्या हो रहा है, कितना होगा, तो ऐसे ही रहने दो इसमें। जब इमाम मालिक का दौर आया तो उस वक्त के खलीफा के पास ये हदीस पहुंची कि असल किबला वहां तक है। उसने कहा कि इस्लाम को दुनिया में ताकत मिल गई है, ठीक है ना, मुसलमान ताकत में आ गए हैं, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने बैतुल्लाह की तामीर हतीम भी शामिल कर लिया। लेकिन जब उसने ये काम किया तो बहुत सारे मुसलमान खड़े हो गए कि जो काम नबी ने नहीं किया वो इसने क्यों किया। वही बात है ना, फितने वाली बात तो हो गई ना, दलील तो फिर हर एक के पास होती है। लिहाजा उस तामीर को क्या किया, अगले खलीफा ने आके गिरा दिया, फिर अगले ने आगे बना दिया। ऐसे जब होने लगा, इमाम मालिक ने फतवा दिया भाई नबी ने जहां तक रखा था वहीं रहने दो, वरना ये बैतुल्लाह की तौहीन है, आके दीवारें खड़ी हो रही, अगला आके गिरा रहा है उसको, अगला की दीवारें खड़ी हो रही। जैसे मस्जिद में जाओ ना, आप अगर टांगे पतली करते हो तो अगला आके टांगे चौड़ी करवा देता है आपकी, वो दूसरे मसलक का है। फिर कोई दूसरा आएगा तो वो फिर पतली करवा देता है। ऐसे नए नए लोग जो इस्लाम में आते हैं ना, उनके साथ ऐसा बहुत होता है, यूं हो रहा है तो यूं हो रहा है, भाई जैसे है वहीं पे एल्फी लगा दो, स्क्रू से टाइट कर दो। अब चाहे चौड़ी वाला था तो पतली नहीं कर सके कोई इसकी टांगे, और पतली वाली थी तो चौड़ी न कर सके। जैसा है नमाज पढ़ने दो उसको, तमीज के साथ, शराफत के साथ। तो ये जो मैंने इज्तिमाई दुआ का मसला बताया, हमारी तहकीक इसमें यही है कि फराइज के बाद जो हम जहरन दुआ मांगते हैं मसाजिदों में हाथ उठा के इज्तिमाई दुआ, इसका कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये मेरी तहकीक है, हमारे अकाबिर की तहकीक है और हमें इस पे बहुत इत्मीनान है। मगर आप इस तहकीक को बुनियाद बना के मस्जिदों में फितना ना फैलाएं। इमाम अपने मस्जिद के इमाम का एहतराम तर्क ना करें। लोग इमाम को जाहिल समझना शुरू करते हैं, भाई उनको अलफलाही है मस्जिद वाले इमाम को तो मसला पता है, हमारे इमाम को तो पता ही नहीं, इनको तो ये तो जाहिल है, इनको तो आता ही कुछ नहीं है। तो ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। क्या ख्याल है? यानी इस्लाम में कोई नहीं आएगा जब इस किस्म की बातें लोग सुनेंगे। मैंने एक साहब से कहा ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करेंगे तो रश लग जाएगा, यानी सब आ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा है, खैर के काम में अगर रश लग जाए तो अच्छा है ना। तो जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसका बहरहाल एहतराम लाजिम है। और वही है कि फरोई मसला है ना, कोई यूं हाथ उठा लिए नहीं उठाया तो इससे कोई क्यामत थोड़ी आ जाएगी। क्यामत थोड़ी आ जाएगी। अगर बेचारे ने मांग भी ली है, उस बेचारे को अल्लाह ने जितना इल्म दिया उसके हिसाब से वो मांग रहा है, तो मांग भी ली तो क्या है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान में फितना परस्त उलमा मौजूद हैं। तो लोग फिर परेशान होकर जब उनके बयान सुनते हैं तो फिर राबता दूसरे उलमा से भी करते हैं, हमसे भी राबता करते हैं। फिर हम ऐसे नहीं होता कि एक एक बात का इंसान दलाइल से जवाब देता रहे, इसकी ये दलील, इसकी ये दलील, इसकी ये दलील। तो भाई ऐसे मौलवियों के पास बैठना ही छोड़ दिया करें जो इस किस्म की फिरका परस्ती की बातें फैला रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बैठना ही छोड़ दें। इनके पास बैठने से दिल का नूर खत्म हो जाता है, रूहानियत खत्म हो जाती है, इबादत की चाशनी और इबादत की लज्जत खत्म हो जाती है। हमने हम्बली फिका को फॉलो करने वाले जो हाथ उठाते हैं रुकू में जाते हुए, उनको भी बहुत सो को नमाज में रोते हुए देखा है खुशू से, और हनफी लोगों को भी नमाज में रोते हुए देखा है। मगर जो इस किस्म के होते हैं ना कि जो कहते हैं तेरी नहीं नमाज नहीं होती मेरी वाली होती, इसमें से किसी भी आदमी को रोते हुए नहीं देखा हमने नमाज में। इनमें खुशू खत्म हो जाता है, ये हिलता रहता है हर वक्त, खुजाता रहेगा खुजाता रहेगा, कभी अपना रुमाल दुरुस्त करता रहेगा, कभी अजीब सी इसकी नमाज होती है जो इस किस्म के फितना परस लोग होते हैं जो हर वक्त फरोई मसाइल को उम्मत में उलझाते हैं और आइमा कराम पे सब वो शतम करते हैं, आइमा कराम को बुरा भला कहते हैं या तंज करते हैं उनके ऊपर। तो इससे रूहानियत खत्म हो जाती है। और ये बात आपको भी बता दूं कि उलमा के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ जबान दराजी से इस बात का खतरा होता है कि आपका ईमान सल्ब हो जाए, मौत ईमान पर नसीब ना हो। आपने मकूला सुना होगा, बे अदब बे नसीब, बा अदब बा नसीब। बहुत सारी चीजें इंसान को अदब तमीज से मिल जाती हैं, अदब तमीज। तो अगर बड़ों की कोई बुराई भी सामने आया करे उस पर पर्दा डाला करो। बुजुर्गों की, बड़ों की, या कोई भी जो हमारे असलाफ और अकाबिर गुजरे हैं, देखो एक आदमी हमें अल्लाह ने जो हमारे वालदैन दिए, हम उनके खिलाफ किसी और के मुंह से सुनना पसंद करते हैं? नहीं करते। और गैरत का भी इतकाज है। तो क्या इसका यह मतलब है कि हमारे वालदैन बिल्कुल नीट क्लीन है, उनमें कोई गलती नहीं है? क्या ख्याल है भाई? यकीनन अब्बा में भी कुछ फॉल्ट होंगे, अम्मा में भी कुछ ना कुछ फॉल्ट होंगे, क्या ख्याल है? और अब्बा ने भी आपके हकूक में कुछ कहीं कोताही की होगी और अम्मा ने भी कुछ ना कुछ कोताही। 100% हकूक तो किसी के कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई इनके जो एहसानात हैं वो इनकी कोताहियों से ज्यादा है। सबसे पहला आसान, ये इन्होंने हमें जना है, ये हमारी जिंदगी का सबब है और इन्होंने हमें घर में ठिकाना दिया। पैदा होते ही ईदी सेंटर में भी दाखिल कर सकते थे ये कि वहां जाके रहो, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? बचपन में हमें पाला, जिसकी वजह से हमें इज्जत मिली मुआशरे में, मां ने मोहब्बत दी, जो मां की मोहब्बत है वो कहीं भी नहीं मिलती इंसान को। यही वजह है कि हमें हुक्म है वालदैन से मोहब्बत करें, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। क्योंकि काफिर होने के बावजूद ये एहसानात तो कर दिए ना उन्होंने। तो इसी तरह याद रखो, हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, उनकी वजह से हमें ईमान मिला, इल्म मिला, اب یہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اب اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے، یا کوئی خدا نخواستہ گناہ بھی اگر ہو گیا ان سے، تو ہمیں اس کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے آپ کے باپ سے اگر گناہ ہوگا تو آپ چاہو گے کہ ساری دنیا کو پتا چل جائے؟ ایک لڑکا آیا میرے پاس، کہنے لگا میرے والد صاحب ایک گناہ میں مبتلا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور یہ بات میں جانتا ہوں، میرے والد جانتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے والد کی یہ برائی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا. میں نے کہا دیکھو اس کے باپ میں برائی ہے نا، اس لیے یہ کیا چاہتا ہے، چھپائے اس کو. مولوی کے سامنے تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ پردہ ڈالیں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے الحمدللہ، کسی کا عیب ہم نہیں اچھالتے، پردہ ڈالیں گے یہ، اور یہ ان کے دل میں توہین نہیں آئے گی. میں تو اس سے بھی منع کرتا ہوں کہ بھائی نہیں بتاؤ مجھے، لیکن بعض لوگ کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے اس میں ان کو بتانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو یہ اپنے باپ کی برائی پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے باپ کی عزت سے میری عزت اور باپ کے احسانات ہیں، لہذا یہ خیر خواہی کے جذبے سے آئے کسی طرح ابا سے یہ برائی چھوٹ جائے. لیکن آپ کو اگر کسی سے نفرت ہوگی تو اس کی برائی دیکھ کے آپ کیا ہوں گے، خوش ہوں گے، اچھا ہے مجھے اس کو بدنام کرنے کا ایک اور موقع مل گیا. تو دشمنی برے لوگوں سے کرنی چاہیے، اچھے لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، انتہائی عزت کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اس کو بیان کر دیا جائے. اور مجھ سے ایک دفعہ کسی نے تکافل کے بارے میں مسئلہ پوچھا. تکافل، ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ جو تکافل کا موجودہ سیٹ اپ ہے یہ جائز نہیں ہے. اسلامک بینکنگ میں تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی ان کے فتوے کے بالکل مطابق جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے، لیکن تکافل کے بارے میں میں نے اپنے ذاتی طور پر چونکہ بہت زیادہ گھسا ہوں اس مسئلے میں، اور جامعۃ الرشید میں جو کمیٹی بنائی تھی تکافل کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، اس میں میں بھی اس میں شامل تھا، تو میں نے پورے ایک سال اس میں اس کمیٹی کے ساتھ مل کے اس مسئلے پہ تحقیق کی ہے. اور یہ تحقیق جامعۃ الرشید کے علماء کی نگرانی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس بھی گئی ہے، انہوں نے بھی اس تحقیق کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ایسے اشکالات ہیں کہ ان کا فی الحال ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ مزید ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو اس پہ غور کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، اگر اس کا کوئی جواب آیا تو اچھی بات ہے، لیکن اب تک اس کا فی الحال کوئی جواب نہیں آیا. تو مجھ سے کسی نے دفعہ مسئلہ پوچھا تکافل کے بارے میں، میں نے کہا ہماری تحقیق یہ ہے کہ تکافل ناجائز ہے. میرے پاس تکافل کے جو ادارہ ہے اس سے کئی لوگوں کے فون بھی آتے ہیں، کبھی کسی مینیجر کا فون آ جاتا ہے، کبھی شرعی ایڈوائزر کا فون آ جاتا ہے. ایک دفعہ تو فون آئے کہ ہم آپ کو تکافل میں باقاعدہ اچھی تنخواہ کے ساتھ جاب دلانا چاہتے ہیں، آپ آئیں گے صرف نگرانی کریں گے سیٹ اپ کی، ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہوگی، مولوی صاحب آپ کی گاڑی ہوگی، آپ کا یہ ہوگا، آپ کا فلانا ہوگا، آپ کا ڈمکانا ہوگا، مزے ہوں گے. خلاصہ آفر آئی ہے مجھے تکافل کمپنیوں کی طرف سے کہ آپ شرعی ایڈوائزر لگ جائیں یا یوں کر لیں تو ہم اتنی تنخواہ ہوگی آپ جتنی ابھی ہے اس سے 50 گنا سمجھ لو، یہ 20 گنا زیادہ، اور گاڑی تو ہوتی ہی ہے آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوتی بھی آٹومیٹک ہے ہماری جو گاڑی ہے، کسی نے دیکھی ہے، اگر نہیں دیکھی تو بہت اچھی بات ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں. اس گاڑی کی وجہ سے جب میں نے پہلی دفعہ جب گاڑی خریدی تو بچے باڈی بلڈنگ کا کام جم کھانا جوڑ دیا تھا بچوں نے، انہوں نے کہا مولوی صاحب کی گاڑی کو دھکا لگانے سے جو آپ کے جو کیا بولتے ہیں اس کو مسلز جو بنتے ہیں نا دھکا لگانے سے، وہ جم میں ویٹ اٹھانے سے نہیں بنتی. تو خیر وہ پھر ہم نے بیچی، بڑی مصیبت سے وہ گلے پڑ گئی تھی. تو وہاں کیا مل رہی تھی، خاندانی گاڑی، تو ساری چیزیں مل رہی تھی. تو وہ جو جنہوں نے مجھے آفر کی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تو کیسے جاب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ تحقیق، بہرحال تحقیق ہوتی ہے، تو اور میں اکیلا تو نہیں ہوں، میں تو میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو بعض ہمارے بزرگ اکابر بھی ہیں وہ بھی اس تحقیق سے متفق ہیں، تو لہذا ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے اور اس پہ ہمیں اطمینان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا تحقیق ہو. تو اس نے کہا آپ اتنے بڑے بزرگ کے خلاف جا رہے ہیں. ہم نے کہا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، رائے تو ہوتی ہے نا علماء کی، تو میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی سینئر مفتی حضرات ہیں جو اس رائے کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، اور ہم نے بھی کافی غور کیا کہ کوئی جواب ہو جائے تو اچھا ہے، کہ ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے خلاف ہو تو بس وہ ناجائز ہی ہو، कोई भी अगर कोई तावील करके कोई जवाज का पहलू निकलता है तो हम खुद उसको जायज करार देंगे इंशाल्लाह। तो कहने लगा नहीं, ये तो उम्मत दो धड़ों में बट रही है, आप उधर जा रहे हैं वो उधर जा रहे हैं, तो ये उम्मत क्या करेगी। मैंने कहा उम्मत कुछ नहीं करे, उम्मत को परेशान होने की चंदा जरूरत नहीं है, उम्मत के पास परेशान होने के लिए पहले बहुत सारी चीजें मौजूद। कह रहे फिर उम्मत क्या करे, वो हलाल कह रहे हैं आप हराम कह रहे हैं। मैंने कहा भाई जिसके फतवे पर उम्मत को एतमाद है उसको फॉलो कर ले, इसमें कौन सी परेशानी की बात है। क्यामत के दिन उम्मत से थोड़ी सवाल होगा कि आपकी तहकीक क्या थी। क्या अल्लाह मैं तो रक्षा चला रहा था, मैं कब तकाफुल की तहकीक करता है भाई, मैं सारा सारा दिन टमाटर बेचता था, मुझे क्या पता तकाफुल क्या होता है और मेरी क्या तहकीक थी। मुझे तो पता चला भाई हजरत जी फलाम मुफ्ती साहब हैं, सब उनसे फतवा लेते हैं तो मैंने भी ले लिया। तो मैंने कहा आपको जिस पर एतमाद है आप उसके फतवे को फॉलो कर लें, आपकी बख्शिश क्यामत के दिन इंशाल्लाह हो जाएगी। नहीं हो तो फिर अल्लाह से यह सवाल पूछना, अल्लाह हम क्या करते, वो ये कह रहे हलाल है वो कह रहे हराम है, हम कहां जाए। फिर अल्लाह बताएंगे भाई तुम्हारे बस में जो कुछ था तुमने कर लिया, अब तुम्हारी राय सही है तो भी सही, गलत है तो भी मैं उसको सही के खाते में डाल दूंगा, क्योंकि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम में जितनी इस्तात है उतना दीन पे चलने की कोशिश करो। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में भी लोग परेशान होते हैं, मिजान बैंक बिंडोरी टाउन वाले कहते हैं हराम है और जामियत रशीद वाले कहते हैं हलाल है, ये कहां जाए आवाम। एक दफा तो तीन लड़के मेरे घर पे पहुंचे और लड़के ऐसे पहुंचे थे जैसे लड़के आए हो और लड़ने भी आए, तो ऐसे उनको गुस्से से यूं तिलमिला रहे हैं और आंखें सुर्ख हो रही हैं और कह रहे आप लोगों ने उसको वीडियो वीडियो के जवाज का फतवा दे दिया, वीडियो कैमरे मस्जिदों में वीडियो कैमरे रखे जा रहे हैं, उलमा के बयानात आ रहे हैं और आप लोगों ने इसको जायज कह दिया और वो तो बिल्कुल बिनोटान वाले तो हराम कह रहे हैं, तो क्या होगा उम्मत कहां जाएगी, ये क्या तमाशा हो रहा है। तो इतना इतना वो जज्बात में थे, मैंने कहा भाई आप बैठे आराम से ठंडा ठंडे हो जाएं, इस तरह से नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा है वो नाजायज कह रहे हैं, इसका नाजायज कहने का भी फायदा है कि थोड़ा सा उम्मत में क्या रहेगा एतदाल रहेगा, और ये जायज कह रहे हैं इसके जायज कहने का भी बड़ा फायदा है, वरना ये पूरा मीडिया बातिल परस्तों के हाथ में आ गया है। क्या ख्याल है, मेरा बयान तो यहां चार आदमी बैठ के सुन रहे हैं या 400 आदमी होंगे या 4000 होंगे, बहुत ज्यादा 1 लाख होंगे, बहुत ज्यादा फर्ज कर लो, लेकिन यही बात जब टेलीविजन की स्क्रीन पे आगे कही जाती है तो 1-2-3 करोड़ लोग आपकी बात एक वक्त में सुन लेते हैं और पहुंच जाती है वहां तक बात। तो अच्छा है इख्तलाफ रहे, और मैंने कहा कि ये इख्तलाफ सहाबा के दौर में भी हुआ करता था हदीस को समझने में, एक का फतवा कुछ और था दूसरे का फतवा कुछ और था, तो वो लोग जो कुछ करते थे ताबेईन क्या करते थे भाई सहाबी का इख्तलाफ चल रहा है तो वही आप भी करें, तो वो ये करते थे जिसकी राय पर एतमाद है उसको फॉलो कर लिया, दूसरे पे तंज नहीं किया। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, दूसरे पे तंज नहीं किया। तो मैंने कहा आप हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी राय को फॉलो कर रहे हैं तो आप कर लें फॉलो, आपसे क्यामत के दिन इंशाल्लाह इस बारे में सवाल नहीं होगा। लेकिन मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो भाई मैं तो नहीं जायज समझता, क्योंकि ये उसके दलाइल है, इसका जवाब नहीं है किसी के पास, तो जब जवाब मिल जाएगा हम मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा इसमें एक बात ये भी याद रखें कि दारुल उलूम कुरंगी में बास मसाइल ऐसे हैं जिसमें हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की अपनी तहकीक बहुत है, लेकिन जो उनके मातहत हैं उनकी अपनी जाती तहकीक नहीं है, वो सिर्फ तकलीद की बुनियाद पर चल रहे होते हैं, लेकिन वो पेश ऐसे करते हैं जैसे उनकी तहकीक हो, लिहाजा जब उनसे सवालात पूछे जाएं तो उन सवालात का जवाब नहीं दे पाते, तो लोग उससे ये समझते हैं कि सबकी यही तहकीक है, तो ऐसा नहीं होता, एक की तहकीक होती है बाकी फिर उसको फॉलो करो। तो फॉलो करना गलत भी नहीं है, वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको अगर कोई फॉलो करता है उनकी तकलीद करता है तो ये गलत नहीं है। तो उम्मत में मसाइल में इख्तलाफ रहा है हमेशा से और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, अगर आप इसको खत्म करने के लिए जमातुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखेंगे तो इख्तलाफ इससे मजीद बढ़ जाएगा, खत्म नहीं होगा, और फिर एक और फिरका पैदा हो जाएगा और फिर जमातुल मुस्लिमीन पार्ट 1 भी आएगा और पार्ट 2 भी आएगा और अब पार्ट 3 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो कहते नहीं अपने आप को पार्ट, लेकिन बहरहाल पार्ट बन चुके हैं, खोखरा पार वाला पार्ट अलग है और फलाना वाला पार्ट अलग है। तो इसलिए फरोई मसाइल में किसी एक को फॉलो कर ले और ऐसे उलमा के बयानात ना सुना करें, चाहे वो मस्जिद नबवी में बैठा हो या बैतुल्ला की छत पे बैठ के बयान कर रहा हो। अगर वो फितने की बात कर रहा है तो कहीं भी बैठ के करेगा तो गलत, बैतुल्ला के अंदर 360 बुत हो सकते हैं तो वहां बैठ के कोई फितना नहीं फैला सकता क्या? अरब ये काम नहीं करते, ये काम कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग। वहां हरमैन के आइमा, आइमा किराम का नाम बड़े एहतराम से लेते हैं, और बहुत सी बातें इस पर, लेकिन इतना मेरा ख्याल है काफी है। तो आप लोग जब मस्जिद नबी जाया करें या हज पे जाया करें तो बयान ना सुना करें, और अगर कोई बयान इस तरह का कर रहा है तो उसके खिलाफ आप ये काम कर सकते हैं, कंप्लेन करें। रफी भाई, नहीं लड़ने से फायदा नहीं है, वहां जाके लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। लड़े नहीं, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। कानूनी तरीके से जब तमीज के दायरे में रह के काम हो सकता है, एक दो दरख्वास्तों से नहीं होगा, दरख्वास्तों की भरमार होनी चाहिए। हाँ ये तो आपने कहा ना कि ये बेकार है, लेकिन वो आप ही को पकड़ के ले जाएगी पुलिस, लोग समझेंगे ये चीख रहा है वो बैठे हुए हैं, तो वो लोग ये पुलिस ये समझती है। तो जो एक तमीज वाला तरीका है कि भाई एक दरख्वास्त लिखी जाए और उनके खिलाफ कंप्लेन करवाई जाए किसी सरकारी महकमे में, वहां जाके पता कर लें, पता चल जाएगा, और एक दरख्वास्त हो, भरमार हो, और उसके बाकायदा दलाइल के साथ, हवाले के साथ कि इसने ये बात की है और ये ऐसे है, तो इस तरह का जब कोई होगा तो वो इंशाल्लाह वहां से उसको हटा दिया जाएगा, वरना वो फितना फैलाता रहेगा। और देखो मैं कह रहा था कि ये मस्जिद नबी में बैठकर इमाम मालिक के खिलाफ इस तरह से बात कर रहे हैं और उन पर इस तरह से तंज कर रहे हैं, तो यही वो मस्जिद तो है जहां इमाम मालिक दर्स दिया करते थे। अगर इमाम मालिक जिंदा होते तो वो कहते कि जिन बहारों को मैंने जिंदा किया है, यानी जो मेरे लगाए हुए बाग हैं, उन्हीं बागों में इस तरह से मेरे खिलाफ, वो जबान से नहीं कहते इमाम मालिक खराब है, लेकिन जो मसाइल बयान करने का जो तर्ज होता है उससे इमाम मालिक को लोग बेवकूफ समझना शुरू कर देते हैं कि इनको पता है उनको नहीं पता था। ये तर्ज की बात कर रहा हूं, ये तर्ज गलत है। तो यही वो मस्जिद नबी है जहां इमाम मालिक दर्स दिया करते थे, और इमाम मालिक तो मदीना छोड़ते ही नहीं थे कि मेरी मौत कहीं मदीना से बाहर ना हो जाए, इतनी मोहब्बत थी उनको मदीना मुनव्वरा से। अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए, और ऐसे उलमा से ताल्लुक नसीब फरमाए जो उम्मत में जोड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। वमा अलैना इल्लल बला। ये भाई नईम की वालदा का बाईपास ऑपरेशन होने वाला है, दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। इसमें पर्चा दिया है कि उनके वालिद हैं शौकत अली साहब, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए भी खुसूसी दुआ की दरख्वास्त। हमारी मस्जिद के पुराने नमाजियों में से हैं, यहाँ सीधे हाथ पे चेयर पे बैठा करते हैं, हसन यूसुफ साहब, बूढ़े से बुजुर्ग हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए भी खुसूसी दुआ करें अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। यहाँ आपने देखा होगा यहाँ बैठा करते हैं, सबसे नुमाया नजर आते थे, तो हमारी मस्जिद की रौनक है, वो मस्जिद को आबाद करने वाले लोगों में से हैं, तो उनके लिए खुसूसी दुआ करें अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। ये जो बयान किया, जो जब तक चंदा हो रहा है ना, तो मुझे आप लोगों को मसरूफ रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसकी मुझे तनख्वाह मिलती है बाकायदा। ये जो चंदा हो रहा है ना, तो इस वक्त तक मुझे ऑर्डर ये है कि दुआ शुरू ना करूं ताकि लोग उठ के चले ना जाएं। पहले जमाने में तो हुकूमतें मसाजिद को और इनको चलाए करती थी ना, गवर्नमेंट तो चलाती नहीं है, तो ये चंदे से ही चलते। लोग कहते तो हैं कि मौलवी लोग चंदा मांगते हैं, तो भाई चंदा नहीं मांगेंगे तो ये सारे मसारिफ कैसे पूरे होंगे? आप बगैर मांगे दे दिया करो, ठीक है? तो इसलिए ये चंदे पर तो मौलवियों को आप लोगों ने लगाया है ना। आप कहो ये मस्जिद है, खुद आके इंतजामिया से पूछो कि कोई कहीं कोई खराबी हो, कोई मसला हो मस्जिद में बताएं, हम पैसे देना चाहते हैं, खुद से लाके दिया करेंगे तो चंदे का ऑर्डर। और मैं तो मांगता नहीं हूं, मुझे मुझसे भी मंगवाया जाता है, ऑर्डर आता है कि भी मांगना है, फिर मैं ऑर्डर पे मांगता हूँ, ऑर्डर पे सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। अपने तौर पर तो मैं नहीं मांगता चंदा, जब जरूरत होती है मस्जिद में कोई काम होता है। बाज दफा ऐसा भी होता है लोग मुझे लाके पैसा देते हैं कि मस्जिद में कंस्ट्रक्शन के लिए ये इतना पैसा, मैंने कहा जब कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही तो मैं क्यों लूं पैसा आपसे, आप रखें अपने पास, कहीं और लगाते हैं उसको, तो जब होगी तो हम बता देंगे आपको। फिर वो पर्ची आ जाती है, भाई ये काम हो रहा है, यहाँ ये लगाना है। फिर लोग उसमें क्या करते हैं कि अपने मरहूमीन के लिए पंखे लगवाते हैं, ठीक है वो भी, लेकिन कभी मरहूम के बगैर भी लगा दिया करें, ठीक है ना। इंतजार करते हैं कि कोई मरेगा तो उसके इसाले सवाब के लिए कारपेट बिछेंगे और उसके सवाब के लिए पंखा लगेगा, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, वो भी सवाब मिलता है। मैयत को पंखे की हवा तो नहीं मिलती बेचारे को, लेकिन बहरहाल नमाजियों को जब हवा मिलेगी तो उसको सवाब जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन बगैर अपने लिए भी तो लगवा दिया करें ना, हमने भी तो मरना है, तो अभी से हम पंखे लगवा दें ताकि कब्र में कुछ थोड़ा सा हमारा अच्छा हो जाए। अभी पंखों की जरूरत नहीं है, एक बात कर रहा हूं। सऊदी अरब में एक अच्छा काम पता है ये होता है कि वहां मैंने देखा है, लोगों से भी सुना है, बहुत ज्यादा देखा तो नहीं, सुना ही है ज्यादा, कि अरब लोग जब नमाज पढ़ने आते हैं तो देखते हैं कि क्या मस्जिद को एक नजर डालते हैं मस्जिद के ऊपर, अगर एसी खराब है एयर कंडीशन, तो वहां इमाम को ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी आया मस्जिद में, उसने देख लिया भाई एयर कंडीशन खराब है, तो फौरन वो लाता है अपने साथ इलेक्ट्रिशियन वगैरह को लाएगा और वो एसी खुद ही अपने खर्चे पे रिपेयर करवा के चला, पता भी नहीं चलता किसने रिपेयर करवा दिया। और मस्जिदों में अब वहां रिवाज चल पड़ा है पानी की बोतलें रखने का। हमारे एक दोस्त ने बताया कि इतना कंपटीशन इसमें शुरू हो गया है कि एक ने लाके ये सुन्नत जिंदा की कि यार मैं रख दूं पानी, लोगों को वहां खरीद के पानी है, सऊदी अरब में पेट्रोल है पानी नहीं है, तो लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ता है, तो किसी ने बोतलें खरीद के मस्जिद में फ्रिज ला के रखा और पानी रख दिया उसमें फी सबीलिल्लाह। अब जब देखा कि लोगों ने देखा भाई ये भी खैर का काम है, तो सबने ये काम शुरू कर दिया। अब इतना कंपटीशन हो गया है कि लोगों को मस्जिद मिलने रही है पानी रखने के लिए, और हमारे यहां लोटे चोरी होते हैं मस्जिदों से, लोटे, चप्पल तो पूछना ही क्या उसका, चप्पलें तो एक दफा नई चप्पल पहन के आ जाओ गई वो आपकी। मैं तो अब मस्जिद में पहन के आता हूं, लोग कहते हैं इतने मौलाना साहब हैं और ऐसे बातें सुनी इनके, चप्पल देखो इनकी, भाई चप्पल इसी वजह से कि ये देखने को मिल रही है, अगर दूसरी पहन के आऊंगा तो नंगे पांव नजर आऊंगा, ये गुम चोरी हो जाती है। लोटे नहीं छोड़ते मस्जिदों के, नलके निकाल के ले जाते हैं, कई दफा यहां मस्जिद में नलके नहीं लगे सुबह गायब। एक दफा चोर यहां से पकड़ा, पंखा चोरी करके जा रहा था, मस्जिद के खादिम ने पकड़ लिया उसको, पता नहीं किस टाइम पे आया और पंखा निकाल रहा था, पंखे तक नहीं छोड़ते। तो वहां क्या है अरब में, वैसे तो वो इसलिए भी चोरी नहीं करते, उनका पैसा बहुत है तो जरूरत नहीं, उनको नीच हरकतें करके करेंगे क्या, वो पंखा चोरी कर लिया तो क्या उनको पंखा, वो तो एसी पे चल रहे हैं, पंखा करना क्या उन्होंने। लेकिन बहरहाल दिल भी है, दिल भी अल्लाह ने बड़ा दिया है, तो वो इतना कंपटीशन चल पड़ा है कि पानी रखने की मस्जिदों में जगह नहीं है, पहले से भरा बहुत। और हमारे पाकिस्तानी भाई वहां भी दो नंबरी करते हैं, चार आदमियों की बोतल एक आदमी लेके जाएगा, वो घर में जो पानी उसने लगवाया हुआ था ना पैसे देके, अब वो मस्जिदों से लेके जाता है, हालांकि उसने नमाजियों के लिए मस्जिद में रखा और लिखा हुआ होता है एक बोतल से ज्यादा अलाउ नहीं है। तो मुझे वहां लोगों ने बताया कि एक जैकेट में दबाई, दूसरी सामने की, और इस तरह करके ना कुछ निकाल के ले जाते हैं, कितनी हरामकारी की बात है, वक्फ का पानी है उसको आप लेके जा रहे हैं इस तरीके से। तो अपनी इसलाह की हमें जरूरत है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। برحمتك يا رحمة